ओम शांति। आप हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं, आज हमको डबल बेनिफिट मिल रहा है। सुबह तो आपने शिलू दीदी जी के मुखारविंद से बाबा के महावाक्य सुने, और अभी विशेष आप सुनेंगे स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप। आप बहुमुखी प्रतिभाशाली हैं, आप यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए भी हम सभी देख रहे हैं कि आप कितने इजी हैं, बिजी होते भी इजी हैं, इतने व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान योग में मस्त हैं। वामन अवतार कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होंगी, क्योंकि नीचे जितने भी शिविर वगैरह चल रही हैं, उनको भी आप मैनेज कर रहे हैं, ऊपर के प्रोग्राम्स को भी आप मैनेज कर रहे हैं, तो हम सभी देखते हैं कि उनके चेहरे से जो दिव्यता दिखाई देती है, तो कैसे वो मेडिटेशन के द्वारा सब कुछ मैनेज करते हुए इतने इजी दिखाई देते हैं। तो आज हम सभी उनके मुखारविंद से सुनेंगे कि स्मृति सो समर्थी स्वरूप। जैसी हमारी स्मृति होती है, वैसी हमारे अंदर शक्तियां आती जाती हैं। आदरणीय शिलू दीदी जी,
ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति। दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहते थे, और फिर नशे से क्या कहते थे, मैं कौन, और तीसरा मुझे क्या करना है, और एकदम समर्थी आ जाती थी दादी को, क्लास कराने की समर्थी ओम शांति कहने से ही। तो स्मृति स्वरूप बनने से समर्थी स्वरूप कैसे बनते हैं, जिसको ही हम दूसरे शब्दों में कहते हैं, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आपका जीवन बनेगा, क्योंकि सोच के आधार पर हमारी वृत्ति बनती है, उसी अनुसार दृष्टि बनती है, फिर उसी अनुसार हमारी भावनाएं बनती है, फिर उसी अनुसार हमारी वाणी निकलती है, फिर उसी अनुसार हमारे कर्म होते हैं। सबका आपस में संबंध है। फिर उसी अनुसार हमारी आदतें बनती है, और फिर उसी अनुसार हमारा व्यक्तित्व बनता है, और वैसा ही भाग्य निर्धारित होता है। इन सबका आपस में संबंध है। हमारी सोच से वृत्ति बनती है, वाइब्रेशंस बनते हैं। हाँ, कई जगह जाते हैं ना, कहेंगे यहाँ क्या वातावरण बहुत भारी है। क्यों भारी है? क्योंकि इसमें यहाँ जो रहते हैं या आते हैं उनकी सोच बहुत नेगेटिव है, नकारात्मक है, या दुख भरी है। जैसे एक शमशान घाट में आप जाइए, अभी कोई का संस्कार करके आए हैं, और तो वो अभी तक वही राख पड़ी हुई है, सब कुछ है, और जैसे ही आप जाएंगे आपको बहुत भारीपन महसूस होगा। भले आवाज कुछ भी नहीं है तो भी भारीपन महसूस होगा, ऐसे नहीं कि शांति महसूस होगी। परंतु आप एक मंदिर में जाइए जहाँ घंट घड़ियाल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, आवाज ही आवाज है, लेकिन उस आवाज में भी क्या होता है, शांति मिलती है। और वहां शमशान घाट में आवाज बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन तो भी शांति नहीं है। तो क्योंकि जैसी सोच छोड़ के गए हैं लोग, दुख के या जो भी सोच अंदर था, उससे वृत्ति बनी। वृत्ति माना वाइब्रेशन, जो व्रत बनते ना, आप पानी में आप पत्थर फेंको तो क्या होता है, वो गोल 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 बन जाता है, ये व्रत कहते हैं, गोल गोल बनना। तो उसी अनुसार वो वृत्ति माना वाइब्रेशन, और उसी अनुसार फिर हमारी दृष्टि भी बनती है। हाँ, कहाँ भी जाएंगे तो वही सोच चलेगा, तो फिर जैसे जहाँ जाएंगे हमको वही महसूस होगा, तो उसी अनुसार दृष्टि बनती है, फिर उसी अनुसार भावना भी बनती है। भावना भी ऐसी होगी, कुछ हद का वैराग्य तो आ ही जाता है ना, शमशान भूमि पर जाओ, इसको कहते हैं शमशानी वैराग्य, तो वो भावना उसी प्रकार की हो जाती है। फिर उसी प्रकार से फिर बोल निकलते हैं, फिर वैसे ही कर्म होंगे, फिर वैसे ही आदत बनेगी। क्योंकि कर्म को अगर हम कोई भी कर्म, साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई भी कर्म आपने लगातार 21 दिन किया, 21 दिन वो दिन भी बताते, 21 दिन रोज एक बार किया, 21 दिन लगातार किया, वो आपकी आदत बन जाएगी। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आदत बन गई, पर तो 21 दिन तक सोचना पड़ेगा ये करना है, ये करना है। और फिर वो आदत बन गई तो क्या होगा, फिर वो ही आपका व्यक्तित्व बन जाएगा, क्योंकि आप वैसे ही बन जाएंगे, और वो ही आपका भाग्य निर्धारित करेगा। तो स्मृति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो बाबा ने भी आकर के सबसे पहले क्या किया, हमारी स्मृति को जगाया है। सारी मुरलियां जो भी हम देखेंगे, हमारी स्मृति को जगाया, बच्चे तुम कौन थे, ये पांच स्वरूपों की याद, पांच स्वरूपों की जो बाबा स्मृति बताते हैं, उनका उनका में योग बताते हैं, तो इसका ये भी तो स्मृति है। आदि काल में हम देवता थे, फिर मध्य काल में हम पूज्य स्वरूप बने, फिर हम संगम पर ब्राह्मण बने हैं, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर परमधाम जाएंगे। तो कुछ बातें पास्ट की स्मृति है, कुछ फ्यूचर की भी, भविष्य की भी स्मृति है। ये थे, ये हैं, ये बनेंगे, ये तीनों ही काल ये पांच स्वरूपों की स्मृति में आ जाता है। और जैसे ही ये पांच स्वरूप स्मृति में लाते हैं तो ऑटोमेटिकली समर्थि आती है। कभी बाबा कहते हैं तुम ही पूज्य स्वरूप हो, हाँ तुम ही पूर्वज हो। अब ये सोच करते ही क्या महसूस होता है, पूर्वज है, माना कितने हम अनुभवी हैं, हम पूज्य हैं। तो सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। जब कहते हैं ना ये दुनिया एक खेल है, इस खेल में हम क्या बताते हैं, हार जीत का खेल है, दिन रात का खेल है, सुख दुख का खेल है, पावन पतित का खेल है, तो ये सब ऑपोजिट्स बताते हैं एक दो के कंट्रास्ट में। इसी प्रकार ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। स्मृति है तो सब कुछ आपका है, और विस्मृति है तो आपका कुछ भी नहीं। कई बार पहले पिक्चर्स ऐसे आती थी, फिल्में आती थी, एक बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति, एकदम अरबपति, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, बच तो गया लेकिन ब्रेन को लगा, फिर चलो बच गया, जागा, लेकिन उसको पूर्व की स्मृति सब गायब हो गई। मैं कोई अरबपति हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, सब कुछ भूल गया, जैसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं, और बस उसी उसी में ही वो रहा, क्योंकि कुछ भी याद नहीं। तो सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है। और फिर जब थोड़ा ठीक हुआ तो फिर एक एक्सीडेंट हो गया, फिर एक्सीडेंट हो गया और दूसरा फिर एक्सीडेंट हो गया, तो फिर जो जब पहला एक्सीडेंट हुआ था उस समय जो अनुभव हुआ वो सब मिट गया, और जो पहली वाली स्मृति है वो फिर वापस याद आ गए। तो ये भी तो ऐसा ही है नहीं, ये खेल भी तो ऐसे ही है। संगम पर हम आते हैं तो पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, बाबा ने आके कितना ज्ञान दिया हमें, पर आज भी बाबा ने वरदान में यही कहा ना, तीन स्मृति का तिलक। कौन सी तीन स्मृति? मैं आत्मा हूँ, पर मैं बाबा की संतान हूँ, और ये ड्रामा। तो इन तीन स्मृतियों में सब स्मृति आ जाती है, सब स्मृति आ जाती है। आत्मा की स्मृति में कितनी स्मृति आ जाती है? सारे स्वमान आत्मा की स्मृति से आ जाते हैं, और हर मुरली में बाबा कुछ न कुछ नया स्वमान हमें देते हैं, और जैसे ही उसकी स्मृति आती है तो शक्ति आती है। आत्मा के स्वमान में सबसे पहला अनुभव, पहली समर्थि क्या आती है आत्मा के स्वमान में? मैं आत्मा हूं, ये जैसे ही स्वमान आया तो सबसे पहली समर्थि क्या आती है? मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। खाली आत्मा हूं नहीं, लेकिन अजर अमर अविनाशी हूं। और उससे शक्ति क्या मिली? मृत्यु का भय खत्म। अभी किसी को मृत्यु का भय है? अचानक शरीर छूट जाए, भय है किसी को? क्योंकि हम आत्मस्मृति में है, और बाबा कहते यही काम आएगा अंत में। शुरू में जो बाबा ने सिखाया अंत में भी वही काम आएगा, इसीलिए बाबा बार बार हर मुरली में आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो ये याद दिलाते हैं। और उसके साथ कितनी स्मृति आ जाती है आत्मा की, सारे स्वमान याद आ जाते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, गीता बहन को याद होगा, हम लोग ऐसे लेक्चर देते थे, इस टॉपिक से, इस ज्ञान की पॉइंट से हमें लाइट क्या मिली या फिर माइट क्या मिली, लाइट और माइट ये बताते थे। लाइट माना उसका ज्ञान, यानी उसकी गहराई क्या समझे, और माइट माना उससे शक्ति क्या मिली। कोई भी पॉइंट ले लो, तो वो जो ज्ञान की पॉइंट है उसमें से प्रकाश क्या मिला, उसकी समझानी से हमको क्या समझ मिली, और फिर उससे शक्ति क्या मिली। तो शक्ति माना समर्थी, वो समर्थी कोई बाहर से नहीं आती है तो हमारे अंदर ही। हम लोग जब योग करते हैं तो उसमें भी तो क्या करते हैं, स्मृति और समर्थि की तो बात है। योग में क्या कहते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं कहते हैं ना, तो शांति कोई बाहर से आती है क्या? कहां से आती है? आत्मा का ही तो गुण है ना ये, तो वो शांति की समर्थि अंदर से ही तो आती है। तो वो स्मृति लाई तो समर्थि आई। कई कहते हैं कि आप लोग जो मेडिटेशन करते हो ना, तो आप कहते हो कि मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं। अब मैं पवित्र तो हूं नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि मैं पवित्र स्वरूप हूं? मेरे अंदर तो बहुत बुरे विचार आते हैं, कभी कभी घृणा भी आती है अपने से कि मैं ऐसे क्यों सोच रही हूं। तो मैं कैसे कहूं मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं कैसे कहूं? ये तो अपने आप को धोखा देना हुआ। कई ऐसे भी कहते हैं, तो अपने आप को धोखा देना, मैं हूं नहीं, मैं गरीब हूं, और मैं कहूं मैं तो करोड़पति हूं, मैं तो करोड़पति हूं तो करोड़पति बन जाऊंगी क्या? लेकिन वो उदाहरण तो स्थूल है, लेकिन ये तो स्मृति स्वरूप माना, ये सूक्ष्म स्मृति है जो मैं हूं। कई यहां तक कहते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां हिप्नोटाइज करती है, लाल लाइट जलाती और फिर कहती है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप हूँ, ये हिप्नोटाइज करती है, सम्मोहित करती है। ये सम्मोहन है, हम कहते हैं सम्मोहन नहीं है। सम्मोहन जो होता है ना वो अल्पकाल का होता है, जो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, किसी को सम्मोहित किया, मैं भैंस हूँ भैंस हूँ भैंस हूँ भैंस हूँ, और सचमुच वो अपने आप को ऐसा भैंस समझने लगा, और दरवाजा जो था वो तो छोटा था, अब कहे मैं कैसे निकलूं, मैं तो इतनी बड़ी, इतना बड़ा भैंस हूँ, इतनी बड़ी भैंस हूँ, मैं कैसे निकलूं। था नहीं वो इतना मोटा, लेकिन अपने आप को वो भैंस बन थोड़ी गया, कहने से क्या बन गया भैंस, वो तो मैंने मनुष्य ही था। इसको सम्मोहन कहते हैं। मैं एक जगह गई थी, मुझे कहा गया था ये बहन जी ये सम्मोहित करता है, आप देखो कैसे करता है। और सचमुच मैंने जैसे ही उसको उन्हें देखा तो उसने कहा हर एक अपने आप को झाड़ू समझे, झाड़ू, मैं झाड़ू हूँ, मैं झाड़ू हूँ। तो ऐसे नहीं वो लंबी झाड़ू होती ना, हाँ वो झाड़ू कचरा निकालती, झाड़ू हो तो ऐसे झाड़ू की तरह चलो। तो चलो तो जैसे चले तो सचमुच झाड़ू हूँ, और जैसे बाहर निकल रहे तो झाड़ू, अरे झाड़ू झाड़ू चल रहा है ऐसे थोड़ी, फिर बाहर गए तो फिर इंसान बन गए, वो झाड़ूपना तो खत्म हो गया। तो सम्मोहन कितने समय का चला, 10-15 मिनट जो भी चला, फिर तो जैसे थे वैसे ही हो गए। तो ये सम्मोहन तो नहीं है, अगर मैं कहती हूँ मैं पवित्र स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांति के सागर शिव बाबा की संतान हूँ, शांति धाम का वासी हूँ, तो ये सम्मोहन थोड़ी है, ये वास्तविकता है। लेकिन विस्मृति हो गई थी, स्वयं की विस्मृति हो गई थी, तो हम अपने आप को याद दिला रहे हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ। और जैसे ही मैंने अपने आप को याद दिलाया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांति कोई बाहर से थोड़ी आई, आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका ये मूल स्वभाव है। तो आत्मा अपने वापस उसी स्वभाव में आ गई जब ये महसूस किया कि मैं शांत स्वरूप हूँ। तो जैसी मैंने मेरी सोच थी उसी अनुसार मेरी स्थिति बनी जो अंदर से ही आई। तो ऐसे नहीं कि मैं तो पवित्र हूँ नहीं, मैं कैसे कहूँ मैं पवित्र हूँ, मेरा तो मन तो बहुत चंचल है, मन में तो बहुत विचार आते हैं। लेकिन अगर चलो विचार आते भी हैं और आपको पवित्र बनना है, ये भी सोच है, तो कैसे बनेंगे पवित्र जब सोचेंगे ना। अगर सोच ही ये कि मैं तो अशुद्ध हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो अपवित्र हूँ, तो शुद्ध बनेंगे क्या? तो अगर शुद्ध बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं वास्तव में ये हूँ, ये मैं हूँ। क्योंकि मैं हूँ ये सोचेंगे तो शक्ति आएगी ना। एक मिसाल देते हैं ना, एक कहानी बताते हैं कि एक राजा था, वो राजा बहुत उसके पास जमीन थी, बहुत जमीन थी। तो उसने कहा मैं अपने जो नागरिक है उनको मैं जमीन देना चाहता हूँ, लेकिन कोई ताकत वाला हो, बहुत ताकत वाला हो। और उसके लिए इतना बड़ा पत्थर रखा और कहा कि जो एक धक से इस पत्थर को तोड़ सके उसको मैं ये जमीन दूंगा, एक धक से तोड़ सके। तो बहुत ही कठोर वो पत्थर था, कोई इतना हल्का नहीं था। तो बहुत आए बड़े मसल मैन, बहुत कोशिश की कि एक धक से टूटे, वो तो टूटा नहीं। सब हार गए, कोई नहीं जीत सका। फिर कैसे दिखा बताते, एक दुबला पतला सा व्यक्ति आया, दुबला, एकदम दुबला, जरा भी उसको वो मसल्स नहीं थे। उसने कहा मैं तोड़ूंगा। तो कहा ये क्या तोड़ेगा, सारे हंसने लगे, ये क्या तोड़ेगा, इसके पास तो ताकत ही नहीं है। उसने कहा पर जैसे राजा की शर्त है तो मेरी भी एक शर्त है, अगर वो शर्त आपको मंजूर हो तो मैं तोड़ूंगा। तो लोगों ने कहा भले क्या शर्त होगी इसकी, भले क्या शर्त है आपकी। तो उसने कहा मेरी ये शर्त है कि मेरे कान में कोई कुछ कहेगा, सुनी होगी ये कहानी, मेरे कान में कोई कुछ कहेगा, वो केवल कहेगा कान में, परंतु तोड़ूंगा मैं। वो हाथ मेरे होंगे, वो नहीं तोड़ेगा, तोड़ूंगा मैं, लेकिन वो कान में कुछ कहेगा। और सचमुच उस व्यक्ति को किसने कुछ कान में कहा, वो कहता गया, और इस व्यक्ति को ताकत आती गई, इतनी ताकत आ गई जो सचमुच एक ढक से तोड़ दिया उस पत्थर को। अब राजा भी हैरान हो गया कि इसने क्या मंत्र दिया, क्योंकि मंत्र में शक्ति है ना, मंत्र में शक्ति है। तो मंत्र कौन सा इसको दिया जो इतनी शक्ति आ गई इसको, और वो भी कान में, इसीलिए मंत्र कान में देते हैं। कान में क्यों देते हैं, ऐसे खुलेआम क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि कान में देने से वो शक्ति आती है। तो ये तो कहने कहावत है केवल। तो तब राजा ने उससे पूछा, तुमको इसने क्या कहा, तो इतनी शक्ति आ गई। तो उसने कहा कि मुझे बस थोड़ी छोटी सी बात कही। क्या कही, फलाना भाई तुम, जिसका जो नाम था, आप राजपूत हो, राजपूत कभी हार नहीं खाते, तुम विजयी हो, तुम कभी हार नहीं खा सकते हो, तुम्हारे पिता ने कभी हार नहीं खाई, तुम्हारे दादा ने कभी हार नहीं खाई, वो भी विजयी थे, विजयी थे, विजयी थे, तुम्हारे परदादा भी विजयी थे। राजपूत तो बहुत शक्तिशाली होते ना, सारे जो आप देखेंगे जो लड़ाइयां हुई है, राणा प्रताप, ये सब राजपूत थे। इन्होंने कैसे युद्ध किए, मुगलों से कैसे लड़े, तो ये शक्तिशाली थे बहुत। तो तुम राजपूत हो, तुम सदा विजयी हो, तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे सारे पूर्वज विजयी थे, विजयी थे, तुम भी विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। ये जैसे उसके कान में पड़े तो क्या आया, ताकत आ गई, ताकत आ गई, और एक धक से उसने तोड़ दिया। तो यही तो है, यही तो चमत्कार है कि स्मृति से समर्थ ही आ गए। तो कई समय से ये तो कल्पना करते हैं, कल्पना, ये कल्पना नहीं है। गीता का सार भी यही है, वो मोह के वश था अर्जुन, दिखाते हैं ना, मोह के वश था, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता था। तो भगवान ने उसका मोह कैसे तोड़ा, उसको स्मृति दिलाई। सारी सारा गीता का ज्ञान स्मृति पर है, अगर इसकी गहराई में जाएं तो। सबसे पहली स्मृति उसको क्या दिलाई, सबसे पहली स्मृति, क्योंकि उसने कहा कि मैं इतने सबको मारूंगा, ये सब मेरे मर जाएंगे मेरे कारण, हाँ मैं निमित्त बनूंगा इनको मारने के लिए। तो पहली स्मृति भगवान ने उसको क्या दिलाई कि आप इनको आत्मा देखो। आप देखिए दूसरा पाठ, दूसरा जो चैप्टर है गीता का, तो उसमें क्या है, सारा आत्मा का ज्ञान है। पढ़िए गीता, जिन्होंने गीता पढ़ी है हाथ उठाओ, सबने पढ़ी होगी, लेकिन इतना समझा नहीं होगा, बाबा की ज्ञान से पूरी समझ आ जाती है गीता की। तो सबसे पहला पाठ यही उसको पढ़ाया कि तुम आत्मा, इनको आत्मा देखो, ये इनको आप, मेरा मामा है, चाचा है, मेरा गुरु है, मेरा फलाना है, ये मत देखो, इन्होंने मुझे ज्ञान दिया, ये शिक्षा दी, वो जो सोच है ना उसको हटाओ और इनको आत्मा देखो। तो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो आप तो किसी को नहीं मार सकते हो, इसलिए आत्मा देखो। तो फिर उसके मन में प्रश्न उठता, आत्मा कैसे देखो, इतना बड़ा बड़ा शरीर, मोटा लंबा चौड़ा शरीर, मैं इसको आत्मा कैसे देखूं। तो फिर उसको दूसरी स्मृति दिलाई, रागी का चैप्टर आता है, क्या स्मृति दिलाई, हे अर्जुन तुम कौन हो, तुम क्षत्रिय हो, ये उसको स्मृति दिलाई। ये सब जो भी पांडव दिखाते सब क्षत्रिय दिखाते हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम योद्धा हो, तुम कभी हार नहीं खा सकते हो, क्षत्रियों ने कभी हार नहीं खाई, तो तुम योद्धा हो, अगर तुम कहोगे मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम कायर कहलाओगे, तुम्हारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो कहेंगे हमारे पूर्वज तो कायर थे, तो क्या तुम कायर बनना चाहते हो तुम्हारे आगे की पीढ़ियों के लिए, इसलिए हे अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम पीछे नहीं हट सकते हो, तुमको तो युद्ध करनी है। अब ये याद दिलाई, फिर भी वो माना नहीं, कहा कि क्या फायदा युद्ध करने से, सब मर जाएंगे, मतलब वो नेगेटिव ही था अर्जुन, क्योंकि मोह की वश था। फिर तीसरी स्मृति क्या दिलाई अर्जुन ने, अर्जुन को भगवान ने तीसरी स्मृति दिलाई कि तुम विजयी हो, तुम विजयी हो, विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम हार कभी खा ही नहीं सकते हो, विजय तुम्हारे साथ है, तो तुम विजयी हो, ये सदा सोचो। लेकिन फिर उसको नेगेटिव विचार आया, अगर ऐसा विजय पा करके मैं करूंगा भी क्या, इन सबको मार के मैं विजयी, मैं किस पर राज्य करूंगा इनको मार करके, ऐसा मुझे राज्य चाहिए ही नहीं, जो मैं इन सबको मार करके राज्य करूं, मुझे ऐसा राज्य चाहिए ही नहीं विजय का। फिर उसको चौथी स्मृति क्या दिलाता है भगवान, हे अर्जुन तुम अगर इस युद्ध में विजयी बनोगे तो तुमको स्वर्ग का स्वराज्य मिलेगा, स्वर्ग का अधिकार मिलेगा। अगर तुम इसमें हार भी गए तो भी तुम स्वर्ग में जरूर आओगे। लेकिन इससे उसको और दुख हुआ कि ऐसा स्वर्ग हमको किस काम का, वो स्वर्ग इन सबको मार के मैं स्वर्ग लेके क्या करूंगा इन सबको मार के स्वर्ग लेना है क्या, मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं। ये सरल शब्दों में मैं आपको गीता की बात सुना रही हूं। तो फिर उसको दिखाया, फिर उसको और आगे का की स्मृति क्या दिलाई, हे अर्जुन इनकी मौत निश्चित है। फिर एक शमशान दिखाया, सब मरे पड़े हैं, खून 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 सब मरे पड़े हैं। भविष्य दिखाया कि इन सब की मौत निश्चित है। अब निश्चित है तो उसको तो कोई टाल नहीं सकता जो निश्चित है। फिर उसको दुख हुआ, तो मौत निश्चित है तो मैं क्यों मारूं, तो अपने आप मरे ना मैं किसको क्यों मारूं, अगर उनकी मौत निश्चित है तो मैं निमित्त क्यों बनूं, बस मैं वही सोच रहा था सारा टाइम। फिर अंत में दिखाते कैसे भगवान ने उनको साक्षात्कार कराया, जो बताते हैं बाबा हजारों सूर्यों से तेजोमय, इतना तेज मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, उसका विराट रूप दिखाया, वो तो विष्णु का विराट रूप दिखाते, अनेक हजारों भुजाओं वाला, इतने सिर वाला, पता नहीं वो नहीं विराट रूप दिखाते हैं। और फिर उसको कहा कि ये तुमको कौन कह रहा है, और फिर बताया कैसे सब उस काल के मुंह में जा रहे हैं, सब इतना बड़ा मुंह दिखाया उसके अंदर जा रहे हैं सब खत्म। अब वो जब उसने साक्षात्कार किया तब उसको महसूस हुआ ये मुझे कौन कह रहा है, ये कोई साधारण रूप नहीं है, ये कृष्ण जो लगता है ये ऐसा, ये साधारण रूप नहीं है, मनुष्य रूप नहीं है, ये तो भगवान मुझे कह रहा है। तो जब बुद्धि में आया ये मुझे भगवान कह रहा है, तब उसकी बुद्धि खुली, ताला खुला बुद्धि का। अब फिर हाथ जोड़ के घुटने टेक कर कहा, हे भगवान अब मैंने समझा मेरा क्या कर्तव्य, आप जो मुझे कहेंगे वो मैं करने लिए तैयार हूँ। हाँ, तो 18 चैप्टर दिखाते हैं, 18 दिन तक उसको समझाता रहा भगवान, समझाता रहा, लेकिन 18वां चैप्टर में तब अंत में उसको समझ में आया अर्जुन को, और उसने युद्ध करना शुरू किया। तभी बाबा भी हमको रोज वही शिक्षा देते हैं, यही शिक्षा देते हैं सबको, क्या देखो, आत्मा देखो, सबको आत्मा देखो। आज भी बाबा ने कहा भ्रकुटी कोई या तखत नहीं है, लेकिन ये अकाल तख्त है आत्मा का, तो मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, आत्मा हूँ, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। दुनिया में अनेक योग करते हैं, और वो जो योग आसन करते हैं ना, या प्राणायाम या कई जो भी साधन अपनाते योग करते हैं, अंत में वो जो आसन होता है वो लास्ट का आसन होता है शवासन, सब बहुत करने के बाद थक जाते हैं, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं शवासन। शवासन माना मैं पैर नहीं हूँ, मैं टांगे नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, माना जैसे शव बन गया मुर्दा, ये नहीं हो, और वो जैसे वो जड़ता लाते हैं, और ऐसे ऐसे जड़ता लाते लाते फिर यहाँ तक आते हैं, और यहाँ को एक्टिवेट करते हैं, माना ये आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते हैं, और जैसे शक्ति आ गई, ये सारी शक्ति ऊपर आ गई, तो वो हठ योग में ये करते हैं। लेकिन बाबा ने जो हमें राजयोग सिखाया है, उस राजयोग में हमें कोई वो शवासन करने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं हूँ, ये जैसे डेड है, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा, मर गया, मर गया, मर गया, और यहाँ चेतन नहीं, आरंभ से यहाँ शुरू करो, मैं कौन, मैं टांगे नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ऐसे नहीं, सीधा ही मैं कौन, आत्मा, तो सीधा यहाँ ही आ जाओ। तो यहाँ से यहाँ तक आने की बजाय यहाँ से यहाँ तक जाओ कि मैं आत्मा भ्रकुटि में विराजमान इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। और जैसे ही मैंने कहा मैं मालिक हूँ, तो क्या स्मृति आई? मेरा राज्य है इंद्रियों पर, मैं जैसे चाहूं वैसे इंद्रियों को यूज कर सकता हूँ, मैं मालिक हूँ ना। जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठा, उसको एक एक इंद्री को ये उसको एक ये नहीं कहना पड़ता एक एक जो पार्ट है पुर्जा है गाड़ी का कि ये नहीं हो ये नहीं हो ये नहीं हो ये नहीं हो और मैं ड्राइवर हूँ, ऐसे कहना पड़ता है क्या? सीधा ही क्या करता है, मैं मालिक हूँ, गाड़ी चलाने वाला रथवान हूँ, मैं मालिक हूँ, और एक जगह बैठ करके सारे गाड़ी को कंट्रोल में रखता है। रिवर्स करना है, साइड करना है, आगे बढ़ाना है, ब्रेक लगाना है, जो भी, मालिक बन करके। और मालिक बन करके अगर गाड़ी को चलाता है पूरी समझ के साथ, फिर तो गाड़ी चलाना तो एक खेल है, खेल है ना। गाड़ियों की भी रेस होती है ना, कार रेस करते हैं, तो गाड़ी चलाना तो एक खेल है। इसी प्रकार जीवन भी एक खेल है ना, हम इंद्रियों का मालिक बन करके खेल खेले। ये इंद्रियां मेरे वश में हो तो खेल नहीं लगेगा। ये जो हम कहते हैं ना ये पांच इंद्रियां जो है, ये वास्तव में अगर वो ही मालिक बन जाती है वही विकार कहलाता है। काम विकार, काम विकार क्या है? ये सेंस ऑफ टच है, स्पर्श रस। काम विकार माना स्पर्श रस, स्पर्श करते हैं तो गुदगुदी होती है, आनंद आता है, समझते बड़ा आनंद आ गया काम विकार से, लेकिन ये स्पर्श रस है। और स्पर्श रस ऐसा है जितना स्पर्श करते जाओ वो तृप्ति कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं, क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति कभी होती ही नहीं है। वो स्पर्श रस को काम विकार कहेंगे। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं टच भी क्यों करना किसी को, हाथ भी क्यों लगाना, ये भी विकार बन जाता है। मैं तो बताऊं विदेश में अगर कोई पुरुष ऐसे बच्ची को भी हाथ लगाए, कई बार यहाँ भी बच्चियां आती है, कोई पुरुष उनको हाथ लगा, हाथ क्यों लगाते हो, है ना, वो बच्चियां भी इतनी पावरफुल होती है। तो हाथ लगाना माना इसको चाइल्ड अब्यूज कहते हैं, विदेश में एक बहुत बड़ा गुनाह है। किसी बच्चे को भी बच्ची को हाथ उठाए ऐसे माना हाथ लगाए भी, तो हम समझते ये तो क्या है, छोटी बच्ची है प्यार किया का, वो भी क्यों। और हम ब्राह्मण तो बिल्कुल उनसे अलग है, इन तो कुछ हाथ भी नहीं लगा सकते। बहुत जरूरी है ये बात समझना, आत्मा देखो ना, बस हाथ स्पर्श क्यों करना। चलो दादियां आपस में मिलती थी, स्नेह मिलन होता था, अलग बात है, लेकिन अभी तो बिल्कुल न्यारा। कोरोना के समय तो सारी दुनिया में ये हो गया, हाथ ही नहीं लगाना है, हैंडशेक भी नहीं करना है। क्या करते थे, भारत की संस्कृति अपना ली, क्या संस्कृति वो दिखाते ना, आपस में जो बड़े बड़े नेताएं भी मिलते थे तो हाथ जोड़ते थे, क्योंकि हाथ मिलाना भी तो स्पर्श हो गया ना। तो इसीलिए ये काम विकार। फिर क्रोध, क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है, क्रोध के लिए कौन सी इंद्रिय, ये आंखें। वैसे कहते हैं चेहरा मन का दर्पण है, जो अंदर मन में होता है ना वो चेहरे पर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चेहरे से भी, चेहरे के भी अंदर पहले आंखें, आंखों से पता चलता है इसको गुस्सा है ना। मुख तो बाद में चलता है, हाथ उसके बाद चलते हैं, तो पर सबसे पहले आंखें, आंखों से पता चलता है इसको गुस्सा है बहुत, ऐसे घूर के देखेंगे ना, फिर मुख चलेगा, फिर हाथ चलेंगे, फिर शायद टांग भी चले, जो भी हो। तो ये क्रोध, फिर लोभ ना, ये जीभ, जीभ रस, जीभ रस समझो, खाइए खाना, खाना चाहिए, खाऊं खाऊं खाऊं। तो बाबा क्या कहते थे, खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं, बलाऊं माना ये सिंधी शब्द है बलाऊं, छोटी छोटी मछलियां होती थी छोटी छोटी, वो इतना नाचती थी ना, अगर उसको कुकर में भी डाल के रखो तो वो ऐसे, अगर उसको बंद नहीं करो ना तो ऐसे उड़ती थी, निकल आती थी उसमें से। तो बलाऊं, कीड़े को पेट में कीड़े होते तो क्या होता है, बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि वो कीड़े खा जाते हैं। तो जिसमें लोभ की वृत्ति है तो ये जीव, फिर मोह ये नाक, जिससे मोह होता है ना तो उसको जैसे कुत्ते से बहुत प्यार है तो क्या करते कुत्ते को, तो बच्चे को भी ऐसे नाक रगड़ते हैं क्योंकि नाक थोड़ा बाहर है ना मुंह से, तो वो नाक सबसे पहले स्पर्श करता है, तो ये मोह की निशानी है। फिर अहंकार, ये कान, कान कैसे, किसी ने मेरी ग्लानी की, अच्छा उसने मेरी ग्लानी की, कान में पड़ गई वो ग्लानी, तो मैं दिखाऊंगा, क्या समझता है, अभिमान, ये अभिमान आ जाता है, क्या समझता है वो अपने आप को, मैं भी कोई कम हो क्या, तो कान खड़े हो जाती है। तो ये पांच जो विकार है ये पंच कर्म इंद्रियों की चंचलता का ही स्वरूप है और कुछ नहीं है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, ये स्मृति दिलाई। ब्रह्मा बाबा ने भी कैसे इसी स्मृति के आधार पर अपने ऊपर कैसे विजय प्राप्त की, बाबा की लौकिक युगल थी, बाबा की लौकिक बहू थी, बहुत मोह था बाबा की युगल का, बाबा में बहुत मोह था, बाबा की बहू का भी बहुत मोह था, लेकिन बाबा ने उनको भी कैसे आत्मअभिमानी बनाया। वो लिखता था बाबा दीवारों पर, राधिका बाबा की बहू थी, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, आत्मा है, तो वो पढ़ती थी तो अपने आप को स्मृति दिलाती थी मैं आत्मा हूँ। सारे संबंध ही बदल गए यज्ञ में, माँ बेटी का संबंध, लेकिन आत्मा है। बाबा ने मम्मा को मम्मा कहा तो मम्मा की लौकिक माँ भी मम्मा को मम्मा कहने लगी, बेटी है पर बेटी को मम्मा कहा क्योंकि बाबा ने मम्मा कहा। बाबा की लौकिक युगल ने बाबा को बाबा कहा, अब कहा वो पति उसका और कहा वो पिता बन गया बाबा का। तो ये सारे संबंध ही बदल गए, सब कुछ बदल गया क्योंकि केवल स्मृति के परिवर्तन से बस। तो इसीलिए स्मृति से समर्थि आ गई, नष्टो मोहा सहज बन गए। फिर दूसरी स्मृति बाबा ने कौन सी बताई, हाँ मेरा साथी कौन है, मां मैं किसकी संतान हूं, इससे कितनी बड़ी समर्थि आती है, मेरा साथी कौन। बाबा उदाहरण देते ना, एक छोटा बच्चा है भले वो कमजोर होगा लेकिन उसका पिता बहुत शक्तिशाली है, तो उस बच्चे को डर नहीं है कि कोई आएगा कोई पकड़ेगा कोई उठा के ले जाएगा, क्योंकि पिता का हाथ है। तो पिता ने अगर बच्चे का हाथ पकड़ा है तो बच्चे को कोई डर नहीं है, दुनिया उसकी है क्योंकि पिता है साथ में। एक मिसाल देते हैं, बताते हैं कि एक बार पिता ने बच्चे को कहा बेटा मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, तो बच्चे ने कहा नहीं पापा पहले आप मेरा हाथ पकड़ो। तो कहा बच्चे आप मेरा हाथ पकड़ो या मैं आपका हाथ पकड़ो, दोनों में फर्क क्या है, क्या फर्क है, बच्चा बाप का हाथ पकड़े या बाप बच्चे का हाथ पकड़े, दोनों में फर्क क्या है। हाँ बच्चा अगर हाथ पकड़ता है तो बच्चा तो कमजोर होता है ना, तो उसका हाथ तो छूट भी सकता है, पर अगर बाप पकड़ेगा तो हा? उसका हाथ तो नहीं छूटेगा, बाप पिता का हाथ तो मजबूत है, तो पिता का हाथ मजबूत है तो वो बच्चे को कैसे छोड़ेगा, बच्चे का छूट सकता है। तो मैंने बाबा का हाथ पकड़ा है या बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, कई बार बाबा ये प्रश्न भी करते हैं, बच्चों ने बाप को ढूंढा या बाप ने बच्चों को ढूंढा किसने किसको ढूंढा, कोई कहेगा नहीं हमने बाबा को ढूंढा या हमने बाबा को पाया, नहीं बाबा ने हमको ढूंढ के निकाला। इसलिए देखो बाबा ने विदेशों में भेजा बच्चों को, क्योंकि कहां किस दुनिया के कोने में बाबा के बच्चे अभी भी हैं। इसलिए बाबा कहते कोई भी आत्मा वंचित न हो जाए, तो कहां कहां कितने देश है कितने लोग हैं, दुनिया के एकदम कोने में भी मनुष्य हैं, उनको कैसे बाबा का परिचय मिले। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को, हाँ बाबा कहते रेस के घोड़े हो तुम, जाते हो सेवा करने के लिए। तो जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं उनको आप बाबा का बनाती हो, और सचमुच जो बिछड़ी हुई आत्माएं उनको एक सेकंड में स्मृति आ जाती है, जो उनको सब बताओ तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। हाँ कहेंगे बात तो बहुत ठीक है, हम भी यही सोचते थे, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। यहाँ तक कि कई हमारी बहनें जब कोर्स कराती है तो पवित्रता की बात नहीं कहती है, वो समझते अगर वहां पवित्रता की बात कहेंगे तो ये भाग न जाए इसीलिए नहीं कहती है। लेकिन कुछ ऐसे भाई बहन अपना अनुभव सुनाते हैं कि हमको बहन जी ने बताया ही नहीं, फिर जब बाबा की मुरली हमने सुनी तब हमको महसूस हुआ कि बाबा कहते हैं पवित्र बनना है, पर कोर्स में नहीं बताया। तो वो बहनों को कहते हैं आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो आत्मा देवता की देवता घराने की आत्मा है, लेकिन जैसे ही उसको स्मृति आई उसने जरा संकोच नहीं किया और एकदम पवित्रता की धारणा कर ली। आप में से भी ऐसे कई होंगे, जैसे पता चला कि पवित्र जीवन श्रेष्ठ जीवन है उसी समय से दृढ़ संकल्प कर लिया, माना आपका पद ऊंचा है सत्यु की दुनिया में। तो इसीलिए कौन है मेरा साथी, कौन है मेरा पिता? बाबा कई बार कहते हैं कि किसी बड़े बाप का बेटा होता है तो पद तो बाप को है, लेकिन बेटा अपने आप को कम थोड़ी समझता है। एक छोटा बच्चा, पिताजी की गाड़ी थी मर्सिडीज गाड़ी, और वो बच्चा उस बच्चे गाड़ी के पास खड़ा है, तो किसी ने पूछ लिया बेटा ये किसकी गाड़ी है? कहा मेरी, मेरी। अरे मेरी क्या, इसके नाम पर तो है नहीं, नाम तो पिता का है, पिता की गाड़ी है, लेकिन उसको नशा है, पिता का जो है वो मेरा है। तो उसी नशे में वो था इसलिए कह दिया मेरी गाड़ी है, तो जो पिता का है वो मेरा है। हा? कितना नशा चढ़ता, ये स्वमान है। तो मैं कौन, मेरा पिता कौन, मैं किसका हूं, ये जैसे ही स्वमान आया तो नशा चढ़ जाता है कि मैं उस सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। तो इसीलिए पिता की स्मृति, मेरा कौन, और जैसे कहा मेरा कौन, मैं अकेला नहीं हूं, हजार भुजाओं वाला मेरे साथ है, दो भुजाओं वाला नहीं, मनुष्य है दो भुजाओं वाला। कोई कहेंगे भाई ये मेरा जीवन साथी है, पर वो जीवन साथी कितना समय चलेगा? ऐसे थोड़ी कि अगले जीवन में भी वही जीवन साथी होगा, जरूरी नहीं है, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन मेरा सच्चा साथी कौन, हजार भुजाओं, हजारों भुजाओं वाला, हजार भी नहीं, कितनी हजार, ब्रह्मा की कितनी भुजाएं दिखाते हैं, हजारों भुजाओं वाला मेरा साथी है। कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना, कभी भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते कंबाइंड रूप, कंबाइंड भी हूं और फिर बाबा साथ भी है, साथी भी है और साथ भी है, दोनों भी अंतर है। एक है साथी, दोनों हम मिल करके काम करते हैं, और एक है साथ, माना मैं हाथ उठाती हूँ तो बाबा का भी हाथ साथ में उठता है, जुड़वे हैं, जैसे जुड़े हुए हैं, है ना, जो जुड़वे होते हैं ना, कई आपने देखे होंगे जुड़े हुए हैं, तो एक को नींद आएगी तो दूसरे को नहीं भी आएगी तो भी सोना पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरे एक को नींद आ रही है, अब दूसरे को खाना नहीं है पर पहले को भूख लगी है तो दूसरे को बैठना तो पड़ेगा ना, क्योंकि पहले को भूख लगी है, वो दूसरा तो जा नहीं सकता, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी थी दो बहनों का मिसाल आता है, 25 साल तक ऐसे जुड़ी हुई रही। अब एक थी उसको था कि मैं डॉक्टर बनूं, दूसरी थी उसको कहा मैं इंजीनियर बनूं। अब डॉक्टर बने या इंजीनियर बने दोनों को एक ही साथ जाना है तो उसके कारण उसको भी अपना उद्देश्य बदलना पड़ा, क्योंकि उसके बिना तो जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम बाबा के साथ जुड़े हुए, ये सदा अगर स्मृति में रहे तो कोई हमें हाथ हमारा छू नहीं सकता, हमको छू भी नहीं सकता, क्योंकि कौन है मेरे साथ। हाँ कई इतने उदाहरण मिलते हैं जब हम बाबा की याद में जाते, कोई समझो हमको छेड़ने के लिए भी आएगा, उसको लगेगा कोई इनके साथ है, जबकि कोई होता भी नहीं है, परंतु हम बाबा की याद में जाते भले अकेले भी हैं और उस व्यक्ति को होता है कि जैसे कोई इनके साथ है इसलिए नजदीक नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। पर बहुत अनुभव होते हैं, ये चमत्कार होते हैं। तो इसीलिए बाबा मेरे साथ है ये अगर सदा निश्चय रहे तो समर्थ ही आ जाती है। कई है ना ऐसे ऐसे ही रोते रहते, देखो मैं अकेली हूँ, मुझे अकेला सब कुछ काम करना पड़ता है, देखो झाड़ू भी लगाओ, पोछा भी करो, बर्तन भी साफ करो, खाना भी बनाओ, ये भी करो, सब मुझे अकेला करना पड़ता है, और रोती रहती है। अब बाबा की बच्चियां तो ऐसे रोती नहीं है ना, कोई रोती है क्या, आए मुझे सब अकेले करना पड़ता है, आता है क्या, कोई मुझे साथ मिले ऐसे आता है क्या, कभी कभी नहीं आता है। सच सच कुछ है जिसको कभी कभी थोड़ा थोड़ा आता है, मैं अकेली हूँ अकेली हूँ, हाँ जी सच्ची सच्ची बात है, या कभी कभी आता है, जिस कभी कभी तो आता होगा, नहीं आता है जिसको कभी नहीं आता है हाथ उठाओ, कभी नहीं आता है, देखो सब नहीं हाथ उठा रहे, मना कभी कभी आता है। पुरुषों को भी आता होगा, देखो मैं अकेला दुकान में हूँ, हाँ आता है ना कि नहीं आता है जी, अकेला हूँ, देखो ये सब मुझे छोड़ के चले गए, अभी मैं अकेला क्या करूँगा क्या करूँगा, ऐसे सोचते हैं क्या, कौन कह रहा है। आता है फिर क्या करते हो, आज भी देखो बाबा ने क्या कहा, हाँ तुम अकेले थोड़ी हो, साथ ही साथ में, ऐसे थोड़ी कहते हैं बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, बाबा की याद नहीं आती है। अरे मैं आत्मा निराकार हूँ और निराकार बाबा मेरा साथी है, वो दिखाई थोड़ी देता, मैं आत्मा भी दिखाई नहीं देती हूँ। तो निराकार बन के निराकार को याद करना है और कर्म भी करना है, इसीलिए बाबा करण करावन हार की डबल डेफिनेशन देते हैं। एक करण करावन हार है कि बाबा करावन हार है, मैं करण हार हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं तो केवल निमित्त हूँ, बाबा करा रहे हैं। कई बार हम कहते मैंने तो क्या किया, बाबा ने कराया, इसको भी निमित्त कहते हैं। दूसरा फिर है कि मैं आत्मा करण हार करावन हार हूँ और ये इंद्रियां करण हार है, इंद्रियों से मैं आत्मा करवा रही हूँ, तो करवा करके फिर न्यारी हो गई, न्यारी और प्यारी भी हो गई और इंद्रियां मेरे वश में है। तो निमित्त के दो अर्थ हो जाते, एक निमित्त अर्थ है कि मैं केवल निमित्त हूँ, मैं कुछ नहीं करती, बाबा कराते। दूसरा निमित्त है मैं जिम्मेदार हूँ, मैं करावन हार हूँ तो जिम्मेदारी है मेरी और इन इंद्रियों द्वारा मैं करा रही हूँ, तो ये इंद्रियों का दोष नहीं है, ये मेरा दोष होगा अगर इन इंद्रियों से अगर गलत काम हुआ। हाँ कई कहते हैं भाई इसने हाथ से मारा, तो क्या मेरा थोड़ी कोई दोष है, तो हाथ का दोष है ना जो हाथ ने मारा, पर हाथ ने ऐसे थोड़ी मारा, किसने उनको उनको एक्शन के लिए वो कर्म के लिए उकसाया, आत्मा नहीं ना, तो दोषी हाथ थोड़ी हुआ, कौन हुआ, आत्मा हुई ना। तो इसीलिए बाबा कहते बाबा साथी। और तीसरा तीसरी स्मृति क्या है, हर वक्त ड्रामा याद रहे, ड्रामा ड्रामा स्मृति में सदा रहा तो बुद्धि इतनी निश्चिंत हो जाती है जो बात मत पूछो, नहीं तो क्या क्यों उसी में आता है, वाई वाई वाई, अभी आपका अगला सेशन वही है, वाई 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 नहीं करो, क्यों 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 नहीं करो, क्या करो, वाह 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 वाह। तो वो आपका क्लास हमारी गोपी बहन लेगी लंदन की, हमारी गीता बहन, तो उनका वो कईयों का डिमांड है कि गोपी बहन क्लास करावे, बहुत उनकी क्लासेस आते भी हैं, तो वो आएंगी, गीता बहन ने अपना उनको दे दिया। तो इसीलिए वाई 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 नहीं करो, क्यों 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 नहीं करो, क्या करो, वाह वाह। अभी कैसे हर वक्त वाह वाह करना, ये एक भी एक बहुत बड़ा ये बहुत बड़ी कला है, वो आपको आगे की सत्र में सुनाएंगे, ठीक है। चलो 11:30 बज गया, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। चलो 2 मिनट बाबा को याद कर।
बहुत बहुत थैंक्स शीलुबेन, आपने ऐसी गुलाबी दोपहर में बड़ी रमणीकता से क्लास कराया, और एक भी मैंने देखा भाई बहन किसी की भी आंख बंद नहीं हो रही थी, क्योंकि बीच बीच में इतनी रमणीकता से उन्होंने इतनी गहरी गहरी बातें बता दी, कैसे हमको स्मृति रहनी चाहिए और कैसे हमारी फिर उससे स्थिति बन जाती है।